को देखो, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वाल्मीकि जी सीधा नाम नहीं कर सकते तो उल्टा ही नाम किया। अब तक लोग उनको जगत में पूजा करते हैं। तुलसीदास जी ने ऐसा रामायण बनाया जिसके प्रत्येक उपाय में किसी न किसी तरह से राम आ जाएगा। व्यास जी ने ऐसा श्रीमद् भागवत बनाया किसी न किसी रूप में उसमें कृष्ण का नाम राधा का नाम आ जाएगा। भागवत करने के बाद में पूरा कंप्लीट करने के बाद में उन्होंने कहा नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन, सब पापों को नाश करने वाला ये और सुख और शांति को देना है, ऐसे भगवान का जो परम नाम है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान से अलग नहीं, भगवान ने अपनी सारी शक्ति इस नाम में दी है। जो भगवान दे सकते हैं उनका नाम भी दे सकता है, ऐसा विश्वास रखो। इसलिए कलयुग में भगवान के नाम से अधिक बढ़कर के कोई चीज नहीं है जो सुखी करा सके। संपत्ति हो सकती है, रुपए पैसे हो सकते हैं, सौंदर्य हो सकता है, राज्य हो सकता है। आप लोग इंग्लैंड की और क्या डायना का नाम जानते हैं, कितनी सुंदरी थी, रूपवती थी, राजकुमारी थी और वहाँ के राजा के साथ में उसकी शादी हुई, सुखी रही। सुखी होने का ये तरीका नहीं है, कोई भी संसार में सुखी नहीं है। अपने अपने प्रॉब्लम से सभी लोग जूझ रहे हैं, चाहे कि ये काम हो जाए तो सुखी हो जाए, किंतु वो नहीं सकते। सुखी होने का एक ही बस मार्ग है भगवान का नाम। कुछ लोग कहते हैं नाम करेंगे और प्याज लहसुन खाएंगे तो इसमें हर्ज क्या है, नहीं कर सकेगा। प्याज लहसुन खाएंगे तामसिक भाव आएंगे, भोग की बुद्धि आएगी और हम जैसे अपने पिता को अपने भाइयों को मरवा दिया, दाराशिकों को मरवा दिया, पिता को जेल में दे दिया, राज्य पाने के लिए कितने लोगों को मरवाया, सुखी नहीं रह सका। इसलिए विचार करके चलना है, सुख कहीं दूसरी जगह नहीं है, है हमारे हृदय में ही, इसको खोज नहीं पाते। खान पान जैसा होगा बुद्धि भी वैसे ही बनेगी। ये सड़े गले चीजों से शरीर बना है, ये भी एक दिन सड़ेगा, इसको भी याद रखो। इसके अंदर में आत्मा और परमात्मा है, जिस दिन उसको जीवात्मा जान लेगी उसी दिन वो सुखी हो जाएगी। इसलिए जो जहां है जिस अवस्था में है जिस रूप में है, सुखी है दुखी है, गरीब है धनी है अमीर है, किसी भी जाति का हो, स्त्री है पुरुष है लड़का है लड़की है, जो जहाँ पर जिस अवस्था में उसी समय से भगवान का नाम करना उचित, यही हमारे भारतीय संस्कृति की ये शिक्षा है। सर्वत्र यही शिक्षा दी गई है, दूसरों से शत्रुता मत करो, कामना मत करो। तुम्हारा कर्म जैसा है वैसे तुमको सुख मिलेगा दुख मिलेगा, सुख की स्पृहा मत करो, इच्छा मत करो और दुख से उद्विग्न न हो, दोनों भाई हैं। दुख आए उसको सह लो और सुख आए उसको भी सह लो। सुख के लिए इच्छा मत करो, दुख के लिए दुखी मत हो। गीता में इसको सुखी होने का कुंजी बतलाई कृष्ण ने अर्जुन को। महाभारत का युद्ध हो रहा है, दोनों सेनाओं के बीच में कृष्ण बैठे हैं, अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। अर्जुन का जब मैं नहीं लड़ूंगा, अरे तू नहीं लड़ेगा अपने आप लड़ेगा, दुर्योधन को कोई लड़ा रहा है तो अपने लड़ रहा है ना, तो तुमको भी लड़ना पड़ेगा, हमारे काने से नहीं लड़ रहा, जरूर लड़ना पड़ेगा। इसलिए परिस्थिति के अनुसार में अपना कर्तव्य कर्म करो, भगवान का नाम करो और दुख भी आए मत टरो, वो भी हवा है वो चली जाएगी। सुख है वो भी अधिक दिन तक नहीं रहेगा, उद्विग्न आदमी हो जाता है थोड़े में, उद्विग्न मत हो। रामचंद्र आए, रामचंद्र जी को विचार करो, वो सुखी रहे कि नहीं, वन में जाना पड़ा ना, फिर स्त्री को कोई चोरी कर ले गया और फिर लौट करके आया तो धोबी के घर से अपनी स्त्री को छोड़ दिया, उनके बेटे दूसरी जगह पल रहे हैं, बड़े सुखी थे ना, सुखी थे, कृष्ण वृंदावन में रहे, ब्रज में रहे, और फिर डर के मारे उनका जन्म हुआ मथुरा में और गोकुल में पले, और फिर इसके बाद में क्या हुआ, जहाँ पर ब्रज में वो रम रहे थे और उनको ब्रज से जाना पड़ा बाहर में, मथुरा आना पड़ा, ब्रजवासियों को छोड़ देना पड़ा, फिर वहाँ पर भी रहे तो वहाँ से भी उनको छोड़ देना पड़ा, कहाँ गए, द्वारकापुरी में, और महाभारत का युद्ध उनको लड़ाई का कराना पड़ा, और फिर उनके आँखों के सामने देखते देखते यदुवंश परस्पर लड़ करके खत्म हो गया। कृष्ण ने क्या किया, चुपचाप बैठे, सुख आया तब, इसलिए अर्जुन को उन्होंने शिक्षा दी। इसलिए सब समय अपने कर्तव्य में रहो, उसमें क्या फल होता है इस फल में मत जाओ, कर्मण्या वाधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन, क्या तात्पर्य, सुख आता है कि दुख आता है, हमने ये काम किया उसमें उसका फल बुरा हो गया, ठीक नहीं हुआ, इसका फल अच्छा हुआ, इसमें कर्म में फल की आशा मत रखो, अपना कर्तव्य कर्म करो, नहीं तो उसमें आसक्त होकर के मकड़ी के जैसे जाल बनाया, मकड़ी उसी में फंस करके मर गई, मत मरो ऐसा, ये संसार मकड़ी की जाला है, जैसे मकड़ी बनाती है ना, उसमें दूसरे भी फंसते, कभी कभी वो भी खुद ही फंस जाती है बेचारी, इसलिए ये संसार, इसमें रह करके कोई सुखी होगा ये धारणा निकाल दो, कोई सुखी नहीं है, सुखी हो गया इसमें से यदि भगवान के प्रति उसकी रुचि हो गई, नाम किया तो सुखी। गुरु क्या देता है, नारद जी ने वाल्मीकि को क्या दिया, रुपया पैसा दिया, धन दे दिया, राज्य दे दिया, क्या दिया, ये ज्ञान उपदेश दिया जो तुम भगवान का नाम करो, वो तो लाखों लोगों को मारने वाले डकैत थे, इतना लोगों को मारा जिसके जनेऊ से कुआं का कुआं भर गया उपवीत से, उन्होंने कहा जी देखो इसे तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, तुम नाम करो, उन्होंने कहा जी मैं तो कर ही नहीं सकता, अच्छा तो उल्टा करो, मारो 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 मारो, मरा मरा करो। नर जी ने व्यास को क्या दिया, ये शिक्षा गुरु यही देता है, गुरु से मत सोचो जी वो संपत्ति देंगे, वो जानते हैं संपत्ति विषय है, विष है, इसे तुम लोग सुखी नहीं रह सकते, हम कहेंगे जी भगवान का नाम, इस जीवित रहने में ही आत्मा को समझो जी आत्मा क्या है, क्यों हम दुखी हैं, इसके पहले भी लाखों बार शादी हुई, बिना शादी के भी सुगर कुकर को शादी करनी होती है, तो शादी का जो भाव है उसमें आ जाता है कि नहीं आ जाता है, शुक्र कुकर को, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो जिसमें ये चीजें नहीं है, संतान उत्पत्ति है विषय, सुवर सुखी हैं उनको तो लड़की की शादी नहीं है, लड़के की शादी नहीं है, कॉलेज नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है, जीवन तो निर्वाह हो ही जाता है, इसलिए ये सब चीजों को विचार करके चलना चाहिए, सुख आएंगे दुख आएगा, उसमें सुख से स्पृहा नहीं करनी है, फल की मत जो, तुम अपना कर्तव्य कर्म करो, भगवान का नाम करो ठाट से, और जीवन में सुख दुख की बात है, देखो तुम्हारा जीवन सुखमय और शांतिमय हो जाए। कृष्ण ने सर्वत्र उपदेश दिया, शास्त्रों में ये उपदेश दिया, मनुष्य जीवन का एक ही कर्तव्य है, समझो जी इसके अंदर में क्या है, आत्मा अनुभूति करो, इसमें पढ़ने लिखने का भी नहीं है, जब पढ़ लिख करके वो हो जाएगा बहुत बड़ा और उसे आत्मा को जान लेगा, नैम आत्मा प्रवचन नहीं लगा, पढ़ने लिखने से भी नहीं, मूर्ख होने से भी नहीं, यदि इसका कोई हरिनाम करे और सदगुरु यदि मिल जाए तो उसके बताए हुए रास्ते में चलो, गुरु से कभी भी जागतिक धन मत मांगो,
वो देंगे तो उसमें दुखी होगी, उसे मांगो ये तत्व ज्ञान कृष्ण के चरणों में कैसे हमारी। हनुमान जी देखो वो सुखी हैं, क्यों? शादी की कि नहीं, बेटे बेटी हैं कि नहीं, सब समय राम की सेवा करते हैं, करते हैं ना, उनको कोई अपने लिए जरूरत नहीं है, प्रभु उसके लिए देखते हैं। हम ऐसे ही अनकंडीशनल सरेंडर कर दे भगवान के चरणों में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अभी देखिए जो 10 मिनट कीर्तन हुआ, सब लोगों की चिंता उस नाम में आ गई, घर भूल गए, सब कुछ भूल गए। जो 24 घंटा करता है वो क्या करेगा, संसार भूल जाएगा, भगवान खुद उसके पास आ जाएगा। इसलिए सुखी होने का कारण ये भगवान का नाम कर, अपना कर्तव्य करो, उसे सुखी दुखी मत हो, उसका फल मत चाहो, फल अपने आप जो होगा वो आएगा, किंतु भगवान का नाम करो, भजन करो।
फल की इच्छा के बिना कर्म करने, कर्म ही नहीं करेगा, कर्म करने का उसके आवेशिक फल
कृष्ण ने किया ना, कृष्ण ने किया, जद जद आचरति श्रेष्ठ तद तद एव इतरो जना। रामचंद्र जी ने कोई कर्म नहीं किया, लीलाएं की, हम लोग कोई कर्म नहीं करते, फल की लालसा से कोई यहाँ पर हम किस लिए आए, अपने कुछ लाभ से आया कि नहीं, किस लिए आए, कर्तव्य है आया। ये सभी लोग आकर के मुझको प्रणामी देंगे, 10-20 हजार लाख रुपए मुझको मिल जाएंगे, इसलिए आया, किस लिए आया, लोगों को कुछ ये तत्व की शिक्षा देंगे। मैं जानता हूं कि सब लोग ग्रहण नहीं करेंगे, तो भी आया है, फल की लालसा से नहीं आया। इससे बहुत से ऐसे हैं जो ग्रहण करेंगे, बहुत से लोग नहीं ग्रहण करेंगे, कई याद बहुत अच्छा है। इसी तरह से राम जी, चंद्र जी ने, कृष्ण ने, बड़े बड़े संत लोग किसी फल की कामना से कुछ नहीं करते, वही तो सीखना है, यह सुखी रहने की कला है। अब हम कीर्तन कर रहे हैं, बहुत से लोग सुखी होने के लिए करते हैं, हम लोग किस लिए करते हैं, हम लोग आत्मकल्याण के लिए, और हमसे ऊपर वाले किस लिए करते हैं, वो रम जाते हैं उनको कृष्ण समझ करके, उनको ऐसा इसमें रस मिलता है जिसकी तुम लोग कल्पना नहीं कर सकते। आपका नाम और मुक्त महापुरुषों का नाम एक नहीं है, उसमें भगवान के साथ में रमते हैं वे लोग, हैं, आत्म प्रसन्नता के लिए, माने आत्मा माने कृष्ण, उनकी आत्मा कौन है, हमारी आत्मा का आत्मा कौन है, इसलिए आत्म प्रसन्नता माने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ऐसा समझो, अपने लिए नहीं, अपनी आत्मा के लिए नहीं, ये भी स्वार्थ हो जाए,
आपकी प्रसन्नता के लिए।
हाँ, हमारी प्रसन्नता इसलिए कि हमारी प्रसन्नता कृष्ण की प्रसन्नता में है, इसलिए हमारी प्रसन्नता भी आप लोग करेंगे तो वो कृष्ण में चला जाएगा, किंतु अभी नहीं पूरा कर सकते। अभी हम बुलाएंगे, जन्माष्टमी के समय आ जाना, तो इतने में कोई एक्सीडेंट हो गया नहीं आ सके, तो हमसे अधिक उनका भी है ना। इसमें अभी संसार में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, आप चाह करके भी नहीं कर सकते। अब रामचंद्र जी कहेंगे कि मैं तो अपनी स्त्री और बच्चों के लिए संसार में हूँ, और नहीं तो मैं कभी आ जाता।
महाराज जी, हमारे रिश्तेदारों के घर में
ऐसे ही रह करके आप लोग, हाँ, तो रामचंद्र जी की बात इसलिए कह रहा था, ये सोचते हैं जब मैं घर अभी नहीं छोड़ सकता क्योंकि हमारी स्त्री है, बच्चे हैं, अभी छोटे छोटे हैं, मैं चला जाऊंगा तो बड़े दुखी होंगे, इसलिए मैं समझते इसलिए नहीं, अपनी अभी दुर्बलता है। महाप्रभु जी ने ये देखा, हमने देखा, सुखदेव गोस्वामी जी ने देखा अपने बाप को, जो बूढ़े बाप हैं हमारे लिए रो रहे, देखा किसी के लिए भी, कोई किसी के लिए बंधा नहीं है, अपने कर्मों से अपनी क्रियाओं से हम सब बंधे हैं। अभी आप मान लें कि कोई छोड़ करके, कोई भी घर छोड़ करके चले जाइए, वैराग्य हो कृष्ण के चरणों में, आपको कोई बांध सकेगा, कोई ऐसी हस्ती है जो बांध सके, नहीं बांध, हमको क्यों नहीं बांध सके। महाप्रभु को देखिए, सुखदेव गोस्वामी को देखिए, कहेंगे जैसे हम नहीं रहेंगे तो उनका देखेगा कौन, तो आप यदि मर जाएंगे तो उनकी चलेगी कि नहीं चलेगी। इसलिए अभी हम लोगों की अपनी दुर्बलता है। जिस समय ऐसा बोध हो जाएगा ये कृष्ण ही हमारे सर्वस्व हैं और सबका पालन पोषण करने वाले हैं, तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर। इन लोगों को भी सुयोग दीजिए। कोई महिलाएं कृष्ण को चाहती हैं, किस लिए? पति बनाने के लिए न? क्या जरूरत है कृष्ण को? राधा का क्यों नहीं वो पूजन करती? भक्ति का ज्ञान नहीं है इसलिए। कृष्ण को खोजने का तात्पर्य क्या है? जैसे पति स्त्री की सब कामनाओं को पूर्ण करता है, कृष्ण अधिक रूप में पूर्ण करेंगे, ऐसी नहीं। हमारे कामनाएं पूर्ण होंगी इसलिए नहीं, भक्ति का स्वरूप पहले समझिए। अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। अपनी सारी इंद्रियों से, तन से, मन से, वचन से, भावना से, आत्मा से, क्रियाओं से कृष्ण की सेवा। कैसी सेवा? वो भी विचार करना होगा। उनकी प्रसन्नता के लिए, वो प्रसन्न रहें, सुखी रहें, अपने लिए नहीं। कृष्ण की सेवा करने से प्रसन्न होंगे और हमको कुछ दे देंगे, भक्ति कहीं खत्म हो गई। इस चीज़ को समझो। तो कृष्ण की सेवा के लिए हो। अच्छा, ये बतला सकती हो कृष्ण ऐसा सबसे अच्छा कौन सा कार्य है जिसे वो कृष्ण प्रसन्न होंगे? क्यों? राधा जी की कोई सेवा करे तो वो प्रसन्न होंगे, सब सब कुछ दे देंगे। क्यों? क्यों राधा जी कृष्ण को क्या देती हैं? क्या सुख देती हैं? क्या प्रेम? इस चीज को समझना है। राधा जी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कोटि कोटि रूप धारण करती हैं। ललिता विशाखा कौन है? उनके एक एक भावनाएं हैं। कृष्ण को जब भी कोई इच्छा हो उस रूप से पूर्ण करती हैं राधिका जी, अपने रूप में, कोटि कोटि गोपियों के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, सत्यभामा रुक्मिणी के रूप में, वही राधा जी हैं। कृष्ण को जब इच्छा कोई हो बस राधा जी ही पूर्ण कर सकती हैं। यशोदा मैया पूर्ण कर सकते हैं कि नहीं? उनकी इच्छा करेंगी कुछ हद तक, नंद बाबा करेंगे कुछ हद तक, श्री दाम सुबल सखा इत्यादि करेंगे कुछ हद तक, हनुमान जी दिन रात कृष्ण भगवान की सेवा करते हैं, क्या करते हैं दिन रात, किंतु सब इच्छा पूर्ण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सीता जी जहाँ पर रात में राम हैं वहाँ पर सीता जी के पास में हनुमान जी जाएंगे? नहीं जा सकते। अपना जूठा राम को खिला देंगे? नहीं कर सकते। राधा जी ऐसी हैं जो कृष्ण की जैसी भी इच्छा होगी पूर्ण कर देंगे, लाखों रूप धारण करके। इसलिए राधा जी अपने कोटि कोटि प्राणों से कृष्ण की सेवा करती हैं, और इसके बदले में कृष्ण क्या करते हैं? अपने कोटि कोटि प्राणों से उनके चरण का महावर अपने सिर पर धारण करते हैं, एक दूसरे को। कृष्ण नहीं चाहते हैं कि राधा जी हमको सुख दें, और राधा जी नहीं चाहते हैं कि कृष्ण हमको सुख दें, कोई भी स्वार्थ नहीं है वहाँ। इसलिए जब सद्गुरु ऐसा मिले तब इस चीज़ को भक्ति का स्वरूप समझेंगे। हमारे प्रहलाद महाराज जी हैं, आप लोग जानते हैं, सब में भगवान को देखते हैं और भगवान में सबको देखते हैं, बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं, किंतु भगवान की सेवा क्या करते हैं? मन से तो करते हैं, बात तो ठीक है, अपने लिए कुछ नहीं करते, किंतु हनुमान जी उसे बहुत अधिक करते हैं। गोपियां सबसे श्रेष्ठ, उन गोपियों में भी राधिका जी, अपने सुख की लालसा नहीं, अभी हम भजन करते हैं ये सोचते हैं कि उनको भजन करने से हम सुखी होंगे, कोई ना कोई तमन्ना कहीं भर भी वो लगी हुई है, किंतु भक्ति में जहाँ भक्ति का स्वरूप बोध हो जाता है ये कामना चली जाती है। हमारा मन परम पूर्ण नहीं, हम कृष्ण की मनोकामना को पूर्ण करेंगे ऐसी भावना आएगी तब ये भक्ति होगा। ये भक्ति का स्वरूप समझना चाहिए, यदि ऐसी भावना हो जाएगी जीवन में वो सुखी हो जाएगा। कृष्ण को सुखी करें हम अपने क्रियाओं से सेवाओं से, देखो जब अपने आप वो सुखी हो जाएगा संसार में। संसार में गोपियों जैसा दूसरा सुखी नहीं है, क्यों? अपना सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगा दी। ऐसे ही यदि कोई कर सके, उन्हीं के लिए कृष्ण अवतरित होते हैं गोपियों के साथ में, परिकरों के साथ में, शिक्षा देकर के जाते हैं। आराम आते हैं मर्यादा की, शिक्षा देकर के जाते हैं। संत पुरुष लोग आते हैं ये सब की शिक्षा देकर के जाते हैं। नाम करो किसी सांसारिक कामना के लिए नहीं, कृष्ण को इसलिए मत बुलाओ जी हमारे पूर्ण काम हो जाएंगे, बस ऐसी सेवा रखो मैं कब कृष्ण की सेवा करने के लिए। राधा जी सबसे अधिक शिक्षा दे सकती हैं जो कैसे कृष्ण को सुखी कर सकती हैं, इसलिए राधा जी की सेवा जरूरत है, उसे कृष्ण प्रसन्न हो, ये भक्ति का स्वरूप है। चलो शिक्षा पूर्ण बोलना। रसगुल्ले खा रहा है बहुत ही कलकत्ते का बना हुआ, मच मच करता है, रग रग में रस भरा पड़ा है, तो जब वो खा रहा है तो उसको रस मालूम होगा कि नहीं, स्वादिष्ट रहता स्वादिष्ट लगेगा। कोई आम खा रहा हो, आम दशहरी आम बहुत मधुर आम, तो उसको रस लगेगा कि नहीं, मुख में आएगा कि नहीं, लगेगा। ऐसे ही देखो उनसे भी रसदार ये कृष्ण नाम राधा नाम है। हरे सारे संकटों को ये हरण करने वाले हैं कृष्ण, और कृष्ण के भी संकट को हरण करने वाली ये राधा जी हैं, राधा जी का नाम है हरा, इसलिए हरे राधे सारे संकटों को हर लेंगी, साथ साथ में कृष्ण के चित्त को भी हरण कर लेती हैं अपनी प्रेममयी सेवा से, सौंदर्य से, माधुर्य से, इसलिए उनका नाम क्या है। यदि कोई उच्च कोटि का भक्त होगा तो जब हरे कृष्ण करेगा ना तो ये रस उसमें है, उसका आस्वादन करेगा। अभी आप लोग नहीं कर सकते, क्यों? इसलिए कि संसार अभी हमें संसार के ये सब चीज़ें हमारे अंदर में सांसारिक आवश्यकताएं रिक्वायरमेंट संसार की कामनाएं गदगद कर रही हैं, इसलिए नहीं होगा। किंतु सद्गुरु के कहने से कुछ दिन प्रैक्टिस करके देखो। एक महात्मा थे 500 वर्ष पहले, वो हरिनाम कर रहे थे, शिष्य कह रहा था, शिष्य को कहा जाए यहीं पर बैठ करके हरिनाम करो, पहले तो शिष्य नहीं कर रहे थे। राजा का लड़का 16 वर्ष का सुकुमार सुंदर घर छोड़ करके आया वृंदावन में भजन करने के लिए, महात्मा जी का नाम था लोकनाथ। वो रोज उनके पास में जाता जी हमको शिष्य बना लीजिए और हमको मंत्र दीजिए, और वो तैयार नहीं। महीनों लग गए, वर्ष लग गया, शिष्य नहीं बना। यहाँ वो टट्टी करते थे लोकनाथ गोस्वामी, वो टट्टी को रात में साफ करने लग गया, जो कुछ भी बने उससे करे। एक दिन रात में पकड़ लिया महात्मा जी ने उसको, बच्चे को, क्यों करता है ऐसा, हमारी टट्टी साफ करने की क्या जरूरत है। वो रोने लग गया, आप हम पर कृपा कीजिए, हम संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करते हैं, हमको हरि नाम का उपदेश दीजिए, दीक्षा दीजिए। तो बोलेंगे हम जब कहेंगे करेगा तो जरूर कर, तो ठीक है। तुम हमारे लिए टट्टी साफ करने लगा और सब काम करता है तो ठीक है, किंतु अब यहीं पर कुटी बना करके हमारे पास में भजन करना पड़ेगा और कहीं मत जाना। कुछ दिनों के बाद में वो भजन करने लगा लड़का भी। एक दिन एक हलवाहा आया, हलवाहा समझते हो कृषक, और आकर के उसको बड़ी प्यास लगी थी, चिलचिलाती हुई धूप, बड़ी गर्मी, प्यासा, महात्मा जी हमें पानी पिला दो। तो बड़े महात्मा जी तो उठे नहीं, वो तो तन्मय हो करके भजन कर रहे हैं। जब नहीं पिलाया तो छोटे महात्मा जी जो था बच्चा उसके पास में गए, जरा पानी पिला दो। तो उन्होंने उसे पानी पिला दिया उठकर। जब पानी पिलाएंगे तो हरिनाम जो कर रहे थे तो छूट जाएगा ना चिंता, भी यहाँ पर आ जाएगी। गुरु जी का ध्यान टूटा टूटा क्या ध्यान टूटा और उन्होंने कहा जैसे क्या किया तुमने, तुमको कहा था जे भजन करना तो भजन तो किया नहीं, तुम घर जाओ, हमारे यहाँ रह करके भजन नहीं कर सकता। तो रोने लगा। उन्होंने कहा जे देखो भगवान का नाम और भगवान दोनों एक ही चीज़ हैं, तो जिसमें तुम भगवान का नाम कर रहा था उस समय में तुम भगवान की सेवा कर रहा था, ऐसा तुम समझता नहीं है, इसलिए भगवान की सेवा से भी बढ़ करके इस हलवाहे को प्यार पानी पिलाया, भगवान को समझ नहीं सका था। जस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि, जिनकी प्रसन्नता से जगत प्रसन्न हो सकता है, जिनके पानी पीने से जगत का पानी पीना हो जाएगा, तुमको भी ज्ञान नहीं है, तुमने भगवान से पृथक इसको समझा और इसको पानी पिलाने गया, भगवान की सेवा को तुच्छ समझ लिया, इससे भी इस प्राणी की सेवा करना बड़ा अच्छा है, जैसे आजकल के लोग समझते हैं, नहीं समझते, वो ऐसा ही समझते हैं। तो जो लोग ऐसा नहीं समझेंगे ये हरि नाम करने से, हरे कहने से सारे संकटों को हरण करके, कृष्ण के भी चित्त वित्त को सबको हरण कर सकती हैं राधा जी अपनी प्रेममयी सेवा से, माधुर्य से, उनका नाम राधा है, उसका अनुभव नहीं करेंगे तो वो क्या भजन करेंगे। गुरु इस चीज़ को देता है, नाम में जो रस है, और कृष्ण क्री कृष्ण धातु से आकर्षण करना, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको कृष्ण आकर्षण नहीं कर सकते, और ण है वो निर्वृत्ति वाचक आनंद वाचक है, वो जरूर आनंद होगा। राधा जी प्रसन्न होती हैं कृष्ण नाम से, और कृष्ण कैसे प्रसन्न होते हैं राधा जी के नाम से। एक भक्त कह रहे थे वृंदावन में राधा कृष्ण नाम मत लेना, निकुंज में राधा कृष्ण है विहार कर रहे हूँ, और उस समय कृष्ण कहेगा तो राधा जी प्रसन्न होकर के आ जाएंगी, तो उनका रास वो टूट जाएगा, और यदि कहा तुमने राधे राधे तो कृष्ण चले आएंगे तो भी तो उनका तो बिगड़ जाएगा मामला, इसलिए वृंदावन में मत करो। भक्तों की भावना ऐसे ही होती है, इस राम नाम में कृष्ण नाम में क्या भरा पड़ा है रस, आप लोग अभी नहीं करते हैं। संसार के कुरस को विषय माने विष से विषय बना है, विषय माने क्या, धन संपत्ति संसार की ये सब आसक्तियाँ हैं, ये इसी से बना है, इसमें सुख नहीं हो सकता, चाहे लाख उपाय करो, बूढ़ा तो होना ही है ना, एक दिन बूढ़ा होना होगा, एक दिन दोनों में से कोई चले जाएंगे, कहाँ रहा सुख, नहीं हो सकता। इसलिए इस नाम में इतना रस भरा पड़ा है, जो अनुभव करते हैं कौन, सारी आसक्तियों को छोड़ करके कृष्ण में रम करके साधु संतों के अनुगत्य में, वो भी वृंदावन में रह करके जो हरिनाम करते हैं। यदि शरीर से वृंदावन ना हो सके तो मन से ही वृंदावन में रहो, समझो जी यहीं पर हम हैं, यमुना जी बह रही हैं, सुंदर वन उपवन है, बेली चमेली के फूल खिले हैं, कदम्ब वृक्ष है, उसमें गोप गोपियाँ हैं, कृष्ण हैं, नंद बाबा यशोदा जी हैं, हम वहीं पर भजन कर रहे हैं। मनी मन में करो, बिना वृंदावन के भजन नहीं हो सकता। शरीर से होता है तो ठीक है, मीराबाई जैसे छोड़ करके चली आई और सब लोग छोड़ करके वृंदावन में चले आए, हम लोग सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में हैं, कभी राधा कुंड कभी गोवर्धन की राज, किस लिए हैं यहाँ पर? जो स्फूर्ति होगी नाम की, रस की उपलब्धि होगी और जगहों में नहीं होगी। किंतु यदि घर छोड़ नहीं सकते, अच्छा तो ठीक है, जहाँ है अपना कर्तव्य कर्म करते हुए मन में से ये रखो कि वृंदावन में हो और राधा कृष्ण का ये नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, विश्व ब्रह्मांड का जितना रस है मिल करके भी एक नाम के रस के बराबर नहीं हो सकता। हम कहते हैं किंतु उपलब्धि करनी होगी खुद, कैसे? जैसे नारद जी ने उपलब्धि की, जैसे व्यास जी ने उपलब्धि की, जिस तरह से वाल्मीकि जी ने, जिस प्रकार से अपने गुरु की कृपा से रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये सब भजन करके होगा। ऐसे नहीं 5 रुपये जमाने के लिए, पाने के लिए दिन रात परिश्रम करना पड़ता है और उसके लिए जीवन सुधर जाएगा, बन जाएगा, उसके लिए कितना समय देना चाहिए, हम लोग दे नहीं पाते। इसलिए नाम में निष्ठा रखिए, इससे सारे दुख भी दूर हो जाएंगे, आनंद की भी उसमें अनुभूति होगी और अंत में ये शरीर छोड़ करके सदा के लिए राधा कृष्ण की सेवा में नियुक्त हो सकते हैं, ऐसा समझ गुरु इसके लिए उपदेश। एक महात्मा आए, बोल रहे थे सर्वधर्म समन्वय हम करते हैं। क्या करते हैं आप लोग? हम लोग महात्मा हैं, बोलता है दीजिए। आजकल सब लोग धर्म समन्वय कर रहे हैं, सब धर्मों को आदर करो, ठीक बात तो ऊपर से अच्छी लगती है। एक मुसलमान कहता है कि हम गाय को खाएंगे काट कर और हमारे धर्म के अतिरिक्त जितने हैं सब काफिर हैं, जो अल्लाह खुदा ने कहा सब काफिर हैं, उनको काटो और उनको इधर ले आओ और सबको गाय खिलाओ ना? तो ये हिंदुओं से मिलेगी, इसमें धर्म समन्वय कैसे करेंगे? कर सकते हैं? संभव है? ईसाई लोग कहेंगे हम गाय भी खाएंगे और सुअर भी खाएंगे, मुसलमानों से बनेगी पटरी, हिंदुओं से पटरी बनेगी, तो कैसे समन्वय करेंगे? ये सब झूठ मुटका लोगों को दिखलावा छलना है। हमारा सर्वधर्म समन्वय गीता में, भागवत में ये बतलाया गया, हरिनाम करो, सबकी आत्मा एक जैसी है, हम सभी भगवान के नित्य दास हैं, ममई मांसो जीव लोके जीव भूता समान। कोई कह देगा कि हम भगवान में मिल करके भगवान हैं, खो जाएंगे, और हम कहेंगे कि हम भगवान का सेवक सेविका होकर के रहना चाहिए, कैसे समन्वय होगा उसमें? पहले समझना चाहिए ये समन्वय किसको कहते हैं। समन्वय उसको कहते हैं जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया यथायुक्त स्थान में हो, उसको कहते हैं अन्वय, और समन्वय कहते हैं और अच्छी तरह से हो। नहीं समझ में आ रहा? कर्म इत्यादि यथास्थान पर हो तो ये इसको समन्वय कहेंगे। समन्वय उसको कहेंगे पति को पति मानो, भाई को भाई मानो, बाप को बाप मानो, सबको पिता ही पति ही मान लो, ये समन्वय है? नहीं समन्वय। समन्वय क्या है? बाप बाप है ना? पिता का पिता हमारा दादू है ना, और बेटा बेटा है, भाई भाई है, साला साला है, सबको मान लो बस एक, क्या सबको खुश करने सभी हमारे पति हैं, यह समन्वय हुआ? यह गलत बात। समन्वय उसको जो जहाँ पर जिस स्थान में है उसके साथ में समन्वय करो, अन्वय करो। मैंने रोटी खाई, मैं कौन हूँ? कर्ता। क्रिया क्या है?
खाई।
और कर्म क्या है?
रोटी।
रोटी राम को खा गई, मुझे खा गई, ये अन्वय हुआ। तो जगत के लोग ऐसे ही कर रहे हैं, अन्वय नहीं हो सकता है जगत में। अन्वय तभी होगा जब कोई भगवान का भजन करेगा, समझेगा। करने वाला कौन है? हु इज डूअर? कृष्ण है। इस चीज को समझो। क्रिया क्या होगी? उसकी सेवा, ये क्रिया होगी। कर्म क्या होगा? उसमें आनंद की प्राप्ति होगी। किसको आनंद? कृष्ण को आनंद होगा, उसे हमको भी होगा। ये समन्वय हुआ। इसलिए हमारे शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में ऐसा समन्वय किया। नए रूप से समन्वय की कोई जरूरत नहीं है। जो जैन धर्म बौद्ध धर्म कहते हैं कि भगवान नहीं है, उनके साथ में हम लोग कैसे समन्वय करेंगे? होगा समन्वय? जो कहते हैं कि भगवान ही नहीं है, कैसे समन्वय करेंगे? वो लोग मरे हुए मांस को खाएंगे, मारेंगे नहीं, मरवाएंगे। एक बहुत बड़ा भारी सेठ जैन, जैसलमेर, आप लोग नाम सुने, हम लोग गए वहां पर, खाटों में बड़ी खटमल, कोटी कोटी, यदि बैठ जाओ उस खाट पर जिन्हें कहाँ से गिरते हैं, इधर से उधर से उधर से, और भर जाते हैं। तो वहाँ का एक सेठ करोड़पति, वो दया करता है जीवों पर, खटमल खिलाओ। कैसे? एक आदमी जिस खूब मोटा ताज़ा शरीर है, रक्त है, उसको कहते हैं भाई तुमको 1,000 रुपया देंगे एक रात के लिए, तुम इस खाट पर सो जाओ। सोने के बाद में क्या करता है? उसको रस्सी से उस खाट में बांध देता है जब उठ ना सके, और खटमल आकर के खाते हैं, खटमल को खिलाता है। ये दया है। इसे हम लोग कैसे समन्वय करेंगे? ये समन्वय है, ये समन्वय। क्रिश्चियन लोग हैं, मैं अभी गया वेटिकन सिटी, वहाँ सबसे बड़ा पोप रहता, सबसे बड़ा। ओह, ताजमहल क्या, उसके चरणों की धूली के बराबर नहीं, करोड़ों की संपत्ति, बड़ा वैभव। वो इटली में उसको पृथक रूप से उसको राज्य का दर्जा दिया गया है, यहाँ पोप रहता है। क्या विशाल बिल्डिंग, कोटी कोटी रुपए की,
बड़ा एरिया।
उसमें जब गया तो देखा लाखों लोग उसके दर्शन के लिए आ रहे हैं। हम लोग भी गए भीतर, जब दर्शन वर्शन हो गया तो हमने देखा जो 5-6 बड़े सुंदर सुंदर 2-3-4 दिन के बछड़े फुदकते हुए, बड़े सुंदर मोटे ताजे वहाँ पर रखे हुए थे 10-15। हमने पूछा जी भाई बछड़े क्या होते हैं, और गायों को तो देखता नहीं, तो इसको कल सवेरे पोप खाएगा, इसके लिए बनाया गया है। हमको बड़ी घृणा हो गई और वहाँ से निकल कर थी। उसके साथ में हम कैसे समन्वय करेंगे? सब धर्म समय हो सकता है? जो इतनी जिससे हृदय में इतनी दया नहीं है जो सब पर दया करे। हमारे यहाँ तो पशु पक्षी कीट पतंग घासों पर भी दया करने की बात कही, सर्वत्र प्राणी हैं, उनके साथ में कैसे समन्वय होगा? नहीं हो सकता है। इसलिए समन्वय को समझना चाहिए। सब धर्म बराबर नहीं है। चोरों का धर्म, मुसलमानों का धर्म, सबका धर्म, औरंगजेब का धर्म, ये सब धर्म नहीं है। इस चीज़ को समझना चाहिए। धर्म एक ही है विश्व का, क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। ये एक की पूजा करने से सबकी हो जाए, ये सब धर्म समझ में है। धर्म है ही नहीं है बहुत, एक ही धर्म है जीव मात्र का, प्रेम धर्म है। प्रेम के अतिरिक्त दूसरा कोई धर्म नहीं है। इस प्रेम के द्वारा राधा कृष्ण को भी रिझाया जा सकता है। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, कुछ नहीं। इसलिए हमारे उपास्य राधा कृष्ण नहीं है, कौन है? प्रेम है। ये प्रेम रहेगा तो राधा कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, खुशी कर सकते हैं। प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्रों में कहा गया प्रेम प्रयोजन। प्रेम नहीं था दुर्योधन को कृष्ण से, कंस को नहीं था, जरासंध को नहीं था, कृष्ण को देख करके क्रोध से वो लाल हो जाते थे। शबरी को देखो, दुर्योधन की इतनी संपदा, कृष्ण गए वहाँ और कृष्ण को दुशासन के सोने के भवन में रखा और तरह तरह की चीज़ें खाने के लिए वहाँ लाया। कृष्ण ने कहा कि भैया हमको भूख नहीं है, भूख होती तो खा लेता, और दूसरी बात जिस काम के लिए आया वो काम तो हुआ नहीं, तो कैसे? और भूख नहीं रहने पर एक चुपचाप बैठो, बैठ बैठ नहीं तभी दे, बैठ 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 चुपचाप बैठ, बैठेगी अभी रसगुल्ला देंगे तुम, पेड़ा जानती है मथुरा की, खाएगी। तो
भूख लगे ना लगे इस काम के लिए आते हैं।
कृष्ण कहते हैं जैसे काम तो हुआ नहीं और भूख लगी नहीं, दूसरी बात एक चीज़ होती है, भूख नहीं रहने पर प्रेम होता है तो खाया जा सकता है, तो तुम्हारे अंदर प्रेम भी तो नहीं, तो कैसे तुम्हारे यहाँ खाए? अब विदुरानी के पास में गए, वहीं से बड़ी भूख लग गई, छटपट भूख से जल्दी से खिलाओ, और वो प्रेम के मारे ऐसे हो गई, केला उसके पास में था और कुछ था नहीं, विदुर तो चले गए थे छोड़ करके पहले ही, तो वो केले के छिलके को हटा करके, केले का वो जो सार भागे खाने का वो तो फेंक रही है, अब बड़े प्रेम से कृष्ण को छिलके खिला रहे, और कृष्ण प्रमत्त होकर के आनंद के मारे कहा जैसे ऐसे तो हमको कभी रुक्मिणी सत्यभामा ने कभी द्वारकापुरी में नहीं खिलाया, इतना आज रस और आनंद छिलके में या उसके भीतर में जो है, किस में आनंद है, रस किस में? प्रेम में है। किसी धनी आदमी के घर में जाओ खूब खिलाता है ना, मानो हमको कृतार्थ कर देगा, रस नहीं आएगा, कहाँ रस आएगा? गरीब आदमी भी है उसमें प्रेम है, खिलाने की ललक है, ऐसे कृष्ण को भूख नहीं लगती, प्रेमी भक्तों को देखने से उनमें भूख लग जाती है, और क्या करते हैं, शबरी के घर में उनको भूख मिटी और बड़े बड़े लोग जो थे उनके यहाँ मिटी। हमारे महाप्रभु जी के लीला में कहाँ उनकी, जाते हैं एक दुकानदार है फल फूल और साग बेचता है, जाते हैं उसे खींच खींच करके लड़ाई झगड़ा करके उसी के घर का ले, वो कहते हैं अरे प्रभु जी रोज हमारे दुकान में क्यों आते हो, तुम दूसरे के यहाँ जाओ, हम तो ये साग पात बेच करके किस प्रकार से जीवन निर्वाह करते हैं, तो तुम्हारे में जो रस आता है लड़ झगड़ करके खाने में उसी के देने पर भी हमको। देखो कृष्ण की भी ऐसी आदत है, ब्रह्मा जी वेद की स्तुति करते हैं और गोपियां क्या कहती हैं कृष्ण को, अरे तरे कहती हैं, चोर कहती हैं, धूर्त कहती हैं और लंपट तक भी कहती हैं, और कृष्ण कान ऐसे कर कर के सुनते हैं, वही गाली सुनने के लिए जाते हैं, यशोदा जी कान उनका उमेठ देती हैं वो खाने के लिए वहाँ से जाते हैं, इसलिए प्रेम के भूखे कृष्ण। ये प्रेम कैसे आए इसको समझना चाहिए, पहले प्रेम का स्वरूप समझो, प्रेम के ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ास पंडित हो, ढाई अक्षर प्रेम का है, कृष्ण को भी प्रेम नहीं आता पूरा, आता है पूरा नहीं आता, क्या करते हैं गोपियों के पाठशाला में पढ़ करके सीखते हैं ये प्रेम किसको कहते हैं, राधा जी के यहाँ ये प्रेम ऐसे चीज, हम वही उसी की कुछ थोड़ी सी शिक्षा लेंगे, भगवान से प्रेम करो, संबंध बनाओ, दीक्षा का मतलब यही संबंध बनो, और भक्ति का स्वरूप समझो, नाम का स्वरूप समझो, और वैसे ही भगवान के साथ में संबंध जोड़ो, कृष्ण मेरे बेटे हैं, कृष्ण मेरे पति हैं, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरे प्रियतम हैं, मेरे प्राण बल्लभ हैं, ऐसा कोई संबंध बनाओ, और उस संबंध के साथ में उनका नाम लो, देखो जैसे कुछ दिनों में अनर्थ दूर हो जाएंगे, इसमें रस आएगा, आनंद मिलेगा और भजन भजन करो, कष्ट आने पर दुख आने की पर प्रहलाद महाराज जैसे बने रहो, मत उसे विचलित हो, यह समझ रखो संसार में जो कुछ कर रहे हो तुम घी आग में भस्म में वो घी दे रहे हो,
राख में,
राख में घी दे रहे हो, जो कुछ कर रहे हो सचमुच में इसका कोई भी महत्व नहीं। यदि सच रूप में हम कहें, आप लोगों को दूसरे कहेंगे जो नहीं नहीं ये बहुत ठीक है, हम नहीं कहेंगे। इसलिए राख में भस्म में घी मत डालो, भगवान का भजन कीजिए। जो जिस अवस्था में है, जैसे रूप में है, बड़ा है छोटा है, इससे कोई मतलब नहीं। हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, ईसाई है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, विधवा है, सधवा, स्थाने स्थिता, अपने स्थान में रहकर भगवान का नाम करो, कलयुग उनसे संबंध जोड़ो, जो वह मेरे हैं, जहाँ संबंध जुड़ा कृष्ण अपना नहीं, मैं उनकी हूँ वो मेरे हैं, इसमें कौन सा ठीक है? बरसाने वाली बतलाओ तो, मैं उनकी हूँ या कृष्ण मेरे हैं, कौन दोनों में कौन सा ठीक है?
हैं,
कृष्ण तुम्हारे हैं कि कृष्ण की तुम हो, ये अच्छा है कृष्ण की तुम हो ना? नहीं, कृष्ण की मैं हूँ तो कृष्ण हमारी सेवा करेंगे ना? मैं उनका बेटा हूँ तो कृष्ण को चिंता रहेगी जो हमारे बेटे की सेवा करें, और तुम्हारे यदि हैं तो हम सेवा करेंगे, ये सेवा की भावना बनी रहे। इसलिए कृष्ण मेरे हैं ये राधिका जी का भाव, कृष्ण की मैं हूँ ये नहीं मानते तो कृष्ण चला जाएगा, और कृष्ण मेरा है तो वो कहीं नहीं जा सकता, इस भाव को समझें। ऐसे संबंध जोड़ करके भगवान का भजन करो। अब 8 हो गया, अब यहाँ पर हम समाप्त करेंगे, इसके बाद एक कीर्तन ये करेंगे, इसके बाद में आरती होगी। आरती का सामान सब रखते हैं, धूप दीप है, ठीक तो पहले कीर्तन कीजिए।